यूएस यूके, इनकी तो अब सॉवरेनिटी भी अंडरमाइन कर रहा है इंडिया। तो ये कंट्रीज जो हैं हमारी सेफ्टी के लिए क्या कर रहे हैं, हमको आरसीएमपी का सिर्फ ये इन्फॉर्म कर देना और कह देना कि भाई आपकी लाइफ जो है उसके ऊपर थ्रेट है, बी सेफ, दैट इज नॉट इनफ। तो हम अब इसको मानते नहीं है, हम चाहते हैं कि भाई आप हमारे लिए कुछ ठोस कदम यहां पर उठाएं और हमारे लिए कुछ करें। तो ये जनाब अब जो है, जाहिर है कि अब तो छुट्टियां हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस वक्त पार्लियामेंट वापस आएगी छुट्टियों से, तो ये मुद्दा जो है हो सकता है कि बड़ा गर्मा गर्मी से जो है, या शिद्दत से जिसको कह सकते हैं, कि इसके ऊपर बात की जा सकती है। ठीक है जी, तो ये है। और मजीद भाई, आपने ये बताया ही है कि क्यूबेक की गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई हम अब क्लासरूम्स के अंदर मोबाइल फोन्स नहीं करेंगे अलाउ। तो उसके अंदर थोड़ी सी मैं डिटेल्स देना चाहती हूं कि नाउ क्यूबेक हैज बिकम द सेकंड प्रोविंस आफ्टर ऑन्टेरियो जिसने कि ये इंप्लीमेंट किया है। और इन्होंने कहा जी कि जिस वक्त विंटर ब्रेक से बच्चे आएंगे तो तब हम इसको एनफोर्स करेंगे, यानी कि डिसंबर 31 के बाद से ये रूल एनफोर्स रहेगा। वो कहते हैं जी, लेकिन हम एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको ये फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं कि अगर किसी खास किस्म के पर्पस के लिए वो स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप अपने मोबाइल फोन्स यूज करें तो फिर वो कर सकते हैं। लेकिन जो है क्यूबेक के बहुत सारे स्कूलों में ऑलरेडी भी सेल फोन्स का यूज जो है लिमिट किया गया है, और ऑन्टेरियो के अंदर तो ऑलरेडी भी किया गया है। अलबत्ता ऑन्टेरियो टीचर्स यूनियन जो थे उन्होंने 2019 में यह कहा था प्रोविंस को कि आपने ये बैन लगाया भी हुआ है इनके ऊपर कि बच्चे जो हैं क्लासरूम्स के अंदर सेलफोन्स नहीं यूज कर सकते हैं, फिर भी इसको पूरी तरह से एनफोर्स नहीं किया जा रहा। Exactly. तो इसको एनफोर्स पूरी तरह से जो है वो करने की जरूरत है। तो अब एटलीस्ट ये जो दो प्रोविंसेस हैं ऑन्टेरियो एंड क्यूबेक, इसमें इन्होंने किया है, तो अब देखेंगे कि कितनी इसको सख्ती से फॉलो किया जा सकता है। अच्छा जनाब, बैंक ऑफ कैनेडा का तो आपको पता ही है कि जो मंत्रा है कि बस जी वो प्राइसेस जो है बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि वो कहते हैं जी कि इसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट इवन 2024 में भी कैनेडियंस के ऊपर आने वाला है। हालांकि इनके जो ये रेट्स इन्होंने बहुत बड़े तरीके से ऊपर बढ़ा दिए थे, तो बिजनेसेस जो हैं उनकी इन्वेस्टमेंट और कंज्यूमर स्पेंडिंग जो थी उसको तो कम करने में इनको जो है वो हेल्प मिली है, जिसकी वजह से ये सोचते हैं कि इन्फ्लेशन नीचे आई है। लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं इस वक्त तो इन्फ्लेशन स्टेबल नजर आ रही है, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं वो अपने मॉर्गेजेस नेक्स्ट ईयर में रिन्यू करेंगे, और जब वो रिन्यू करेंगे तो डेफिनेटली उनके जो मॉर्गेजेस हैं वो बहुत हाई प्राइस पे रहेंगे। वो कहते हैं जी 45% मॉर्गेजेस जो हैं वो तो ऑलरेडी ऊपर जो है वो जा रही हैं, और 2026 में इसका मतलब है कि ना सिर्फ एक सर्टन ग्रुप बल्कि बहुत सारे जो कैनेडियंस हैं उनके ऊपर ये जो हाई पेमेंट रेट्स हैं ये उनके ऊपर अफेक्ट करने वाले हैं। वो कहते हैं जी कि उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 2024 में भी वीक रहेगी, जिसका के मतलब है कि इकोनॉमी वीक रहेगी, जिसका अगेन मतलब है कि जॉब्स कम रहेंगी, वेजेस जो है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं किए जाएंगे। अभी नवंबर में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया था वो था 5.8%, और ये जो है वो कह रहे हैं जी कि ये कॉन्स्टेंटली राइज कर रहा है, जिसकी की वजह से इकोनॉमी के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और एनुअल इन्फ्लेशन रेट जो कनाडा के अंदर है वो 3 के पास पास ही खड़ा हुआ है। तो अब इसका जाहिर है कि मुश्किल ही होगी लोगों को इवन 2024 में। ये है जनाब आज की रिपोर्ट। यूएस ने जनाब आज अटैक्स किए हैं इराक के जो मिलिशिया खतीब हिजबुल्ला है उसके ऊपर इराक के अंदर, और इसका ऑर्डर जो था ये बाइडन साहब ने दिया था एज अ रिटेलिएशन। व्हाइट हाउस ने आज इसकी डिटेल्स देते हुए कहा कि जी ये ड्रोन अटैक्स जो कि इरानियन अलायंड ग्रुप ये खतीफ हिजबुल्ला ने हमारे पे किया था, जिसकी की वजह से 3 यूएस सर्विस मेंबर्स जो हैं यानी कि 3 सोल्जर्स जो हैं यूएस वो जख्मी हो गए थे, जिसमें कि एक की हालत खराब है। तो फिर बाइडन साहब ने ऑर्डर दिया था एयर स्ट्राइक का, जबकि डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने इनसे इजाजत मांगी थी। ये कहते हैं जी कि अब यूएस ने 3 लोकेशंस के ऊपर स्ट्राइक्स किए हैं, एक तो खतीब हिजबुल्ला के जो कुछ अड्डे हैं, इसके अलावा जो दूसरे आर्म्ड ग्रुप्स के जो और भी ऐसे एरियाज हैं जहां से कि ये अपने ड्रोन एक्टिविटीज करते हैं उनके ऊपर भी हिट किया है। सेंट्रल कमांड ने कहा है अमेरिका में कि इन्होंने खतीब हिजबुल्ला की बहुत सारी ड्रोन फैसिलिटीज को खत्म किया है और इनके बहुत सारे फाइटर्स को जो है वो भी मारा है, लेकिन इसके अंदर सिविलियन कैजुअलिटीज कितनी हुई हैं उसका कोई जिक्र अमरीका ने नहीं किया है। وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہمارے اوپر اٹیک جو تھا انہوں نے خطیب حزب اللہ نے کیا تھا اربل کا جو یو ایس ایئر بیس ہے اس کے اوپر, اور یہ جو ہیں اس کے بارے میں امریکہ کہتا ہے کہ یہ عراقی شیعہ ملیشیا ہے وچ از لنک ٹو ایران ریولیوشنری گارڈ کارپس, اور یہ اس کو انہوں نے ڈیزگنیٹ کیا ہوا ٹیررسٹ آرگنائزیشن آن یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جب آپ ویب سائٹ دیکھیں گے تو وہاں پہ سنس 2009 ان کو جو ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ جیسے جیسے اسرائیل جو ہے وہ غازہ کے اوپر اپنے اٹیکس انٹینسیفائی کرتا جا رہا ہے, یہ جو لوگ ہیں عراق اور سیریا میں یہ بھی اب یو ایس پوزیشنز جو ہیں ان ملٹری کی ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور تقریباً جس دن سے اکٹوبر 7 سے حماس نے اٹیک کیا ہے اور اسرائیل نے اس کے اوپر کاؤنٹر اٹیکس کرنے شروع کیے ہیں اس دن سے 100 کے قریب جو ہیں یو ایس ملٹری کی جو عراق اور سیریا میں پوزیشنز ہیں ان کے اوپر اٹیک کیے جا سکے ہیں. یو ایس ڈیفینس ڈپارٹمنٹ جو ہے اس نے بتایا نہیں ہے کہ کتنے یو ایس ٹروپس جو ہیں عراق میں اس وقت اسٹیشن ہیں, لیکن جولائی میں ابھی اسی سال میں انہوں نے کہا تھا کہ کچھ یو ایس ٹروپس جو ہیں وہ ابھی بھی ایڈوائز اینڈ اسسٹ مشنز میں وہاں پہ موجود ہیں. اب کچھ کا کیا مطلب ہے اس کو زیادہ جو ہے وہ ڈیفینس ڈپارٹمنٹ نے ایکسپلین نہیں کیا ہے. اچھا جی, کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بیتلہم میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو افسوس کا جو اظہار کیا گیا تھا کہ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے سویلینز کے ساتھ, تو اس کی وجہ سے کرسمس کی بالکل نہیں کی گئی تھی فیسٹیویٹیز. تو آج کرسمس کے دن جو ہے کرسمس کی رات سے یہاں پہ جو اسرائیل ہے اس نے جنین میں اور یہ جو بیتلہم ہے اس کے اوپر اور جو دوسرے ولیجز ہیں جیسے کہ جیلما ولیج ہے, نیبلس ہے, جیریکو, رملہ, ان سب کے اوپر اٹیکس جو ہیں وہ بے تحاشا شروع کر دی ہیں جس کے اندر سینکڑوں ہی لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں اور سارے کے بہت سارے گھر جو ہیں وہ ملیا میٹ ہو گئے ہیں. یہاں پہ رپورٹس کے میڈیا کی رپورٹس کے مطابق جو ہے یہ جو اٹیکس کیے گئے تھے خاص طور پہ بیتلہم اس کے اوپر کرسچنز نے بہت برا منایا, کیونکہ ہم نے آپ کو کل بھی جیسے بتایا تھا کہ کرسچنز سمجھتے ہیں کہ یہ جیزس کی برتھ پلیس ہے اور یہاں پہ تقریباً 20 کے قریب جو لوگ ہیں ان کو جگہ جگہ پہ ان کی تلاشی کی گئی, ان کو ڈھونڈا گیا اور ان کو جو ہے اریسٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو یونائٹڈ نیشنز کے کچھ سٹاف ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ سینکڑوں ہی ڈیتھس یہاں پہ ہو چکی ہیں اور اسرائیل کا یہ جو طریقہ کار ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کے اوپر اسرائیلی گورنمنٹ جو ہے منسٹری آف فارن افیئرز اس نے آج اپنے ایکس پہ کہا ہے کہ یہ یو این کی ہپوکریسی ہے اور یو این سٹاف کو ہم اب بالکل ان کے جو ویزے ہیں وہ جیسے جیسے ختم ہوئیں گے ہم اس کو ایکسٹینڈ نہیں کریں گے کیونکہ یہ ایک بائس دکھا رہے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کا کہنا ہے کہ اوور 100 جرنلسٹ, 270 میڈیکل پرسنل, 134 یو ایس سٹاف جو ہیں وہ اسرائیل کی اسٹرائکس میں مر چکے ہیں, لیکن اسرائیل اس کو ماننے کو تیار ہے. یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے کہا تھا کہ فوراً سیز فائر کیا جائے اور انہوں نے آرٹیکل 99 آف یو این چارٹر بھی انووک کیا تھا. انہوں نے کئی دفعہ سیکیورٹی کاؤنسل کو وارن کیا ہے کہ گلوبل تھریٹ جو ہے وہ اسرائیل کی وار جو ہے پوز کر رہی ہے. یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی جو ہے اس نے بھی ہیومینیٹیرین سیز فائر کے لیے بہت دفعہ ووٹ کیا ہے, لیکن اسرائیل بالکل اس بات کو نہیں مان رہا ہے, بلکہ الٹا اس نے کہا ہے کہ ہم یونائٹڈ نیشنز کے کسی بھی اپ سٹاف کو اور ویزے ایکسٹینڈ نہیں کریں گے اور نئے تو بالکل ہی جاری نہیں کریں گے. تو یہ جناب چیزیں جو ہیں ذرا خرابی کی طرف جاتی جا رہی ہیں, اور یہ جو انہوں نے اٹیکس کیے ہیں اوور نائٹ اس میں سینکڑوں ہی لوگوں کی جو ڈیتھس ہوئی ہیں ان کو اب میس گریوز میں ڈالا جا رہا ہے کیونکہ جگہ بھی اب جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. سدرن تھائی لینڈ کے اندر جناب بہت ہی سیویئر فلڈنگ ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے ہزاروں ہی لوگ افیکٹڈ ہیں. ساری روڈز اور ریلویز اور سارے جو اور بہت سارے میجر شاپنگ سینٹرز وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پانی کے اندر بھرے ہوئے ہیں. بہت سارے اسکولز جو ہیں اس کی وجہ سے بند رہے. یہ زیادہ تر جو طوفان آیا ہے فلڈنگ کی وجہ سے یہ ناراتھی وارڈ کا جو پروونس ہے جو کہ ملیزین بارڈر کے اوپر ہے وہاں پہ آیا ہے اور ریسکیو کا کام یہاں پہ جاری ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں ابھی بھی اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. 7 بوٹس جو ہیں وہ گلف آف تھائی لینڈ میں سنک کر چکی ہیں اور انڈمان سی سے بھی ایسی کچھ خبریں آئی ہیں. یہ جو طوفان ہے یہ اب وہ کہتے ہیں جی کہ زیادہ تر یہ جو علاقہ ہے یالا کا اس کو بھی اس نے بہت زیادہ افیکٹ کیا ہے, وچ از 100 کلومیٹرز فرام بارڈر جہاں پہ کہ ٹرینز جو ہیں وہاں پہ روکی جا رہی ہیں اور اتھارٹیز نے ریزیڈنٹس کو کہا ہے کہ بھئی آپ بالکل اب ایویکیویٹ اپنے آپ کو کریں فلڈز کے ایریا میں سے اور وہاں پہ رہ نہ جائیں. لاسٹ ایئر بھی دسمبر کے مہینے میں جب فلڈز آئے تھے تو اس میں کافی ساری ڈیتھس ہوئی تھی, تو یہ اب پھر سے جو ہے یہاں پہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا. اینڈ جناب دس پارٹ آف دا پروگرام از بی being brought to you by Naan and Kabob. Naan and Kabob, आपको पता ही है कि बहुत जबरदस्त इनके जो हैं ग्रिल खाने होते हैं, तो अगर आपको enjoy करना है तो आप इनको call कर सकते हैं at 416-285-8191. ये they are located at 5042 Satellite Drive, Unit Filmi 3 in Mississauga. इसके अलावा जनाब ग्रिल एंड चिक के आपको पता ही है कि पहले ब्रैम्पटन के अंदर 15 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट के ऊपर इनका आउटलेट था, और अब इनका दूसरा रेस्टोरेंट जो है वो खुल गया है मिसेस सागा के अंदर 3525 प्लैटिनम ड्राइव पे. तो अगर आपको इनके साथ ऑर्डर डालना है तो 9056062345 पे डालें. इसके अलावा सुल्तान भाई के पास आपको पता ही है बहुत जबरदस्त किस्म की डील्स भी होती हैं, और हर रंग के उनके पास अप्लायंसेज भी हैं. तो अगर आपको उनके साथ भी कोई डील बनानी है या अपना ऑर्डर डालना है तो 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट पे ये होते हैं, तो आप इनको फोन कर सकते हैं एट 9054502828. एंड जनाब बुनंजा सतरंगी, बहुत जबरदस्त कपड़े हैं वहां पे और बहुत ही मुनासिब प्राइस में हैं. सिर्फ आपको 37 से 40 डॉलर्स के अंदर जो है शलवार कमीज दुपट्टा और मर्दों के भी शलवार कमीज जो है वो मिल जाएंगे, और जो रिजवे प्लाजा है मिसिसागा का उसके अंदर है ये बुनंजा सतरंगी. तो अगर आपको वहां पे जाके अपनी ईद जैसे अभी आ जाएगी 2-3 महीने में ये रमजान के बाद, तो अगर आपको उसकी शॉपिंग करनी है तो आप कर सकते हैं. और बहुत ही जबरदस्त किस्म की वहां पे सारों के लिए, ना सिर्फ औरतों और मर्दों के लिए बल्कि छोटे बच्चों के बड़े प्यारे कपड़े हैं, और फिर परफ्यूम्स हैं, ऊद है, तो आप बहुत कुछ वहां पर खरीद सकते हैं, तो आप जरूर वो खरीदें. अच्छा जनाब, पाकिस्तान के अंदर जो आज पिशावर हाई कोर्ट है उसने पीटीआई को इंटरिम रिलीफ दिया है, और इनका जो था सिंबल था बैट इनको वापस कर दिया है. और आपको पता ही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए थे उसके ऊपर बहुत ज्यादा एतराज किया था, जिसके के ऊपर इन्होंने कि बैरिस्टर गौहर अली खान को अपना चेयरमैन ढूंढा बनाया था, तो उस पर इन्होंने कहा कि नहीं, ये इसके अंदर ये सही तरह से नहीं इन्होंने ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए हैं जिसके ऊपर इनको खुद करने की जरूरत है. तो आज कोर्ट ने जब इनकी ये सुन रहे थे, हियरिंग सुन रही थी, तो ईसीपी का ऑर्डर जो है उन्होंने सस्पेंड किया है, और उन्होंने कहा कि इसकी हियरिंग जो है एंड ऑफ विंटर वेकेशन जो है उस पे सुनी जाएगी. और ईसीपी ने दिसंबर 2022 में इनसे ये सिंबल जो है बैट का ले लिया था पीटीआई से, और फिर बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि हम पिशावर हाई कोर्ट में ये रूलिंग डालेंगे. आज उन्होंने बात करते हुए कोर्ट के बाहर कहा कि ये जो था फाइनल नेल था इन द कॉन्स्पिरेटर्स कॉफिन, और वो कहते हैं जी कि इस फैसले की वजह से जुडिशरी जो है उसका बहुत ज्यादा मेयार जो है हाई हुआ है, और नेशन जो है उसका कॉन्फिडेंस जो है फिर से जुडिशरी के अंदर आया है. उन्होंने कहा जी कि अब ईसीपी यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फौरन अपनी वेबसाइट के ऊपर पीटीआई का ये सर्टिफिकेट जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर छापे, और जिसमें कि दिखाया जाए कि जो पीटीआई है उसके पास बल्ले का निशान है, और एक फेयर इलेक्शन जो है उसकी तरफ चलने की ये लोग कोशिश करें. इमरान खान साहब जो है जी, आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जो है उसका दरवाजा फिर से खटखटाया है, क्योंकि वो तोशाखाना केस जो है उसके अंदर वो जो है उनको जो कन्विक्शन की गई थी उसके अंदर वो उसको चाहते हैं कि बिल्कुल उसको खारिज किया जाए. इनके जो लॉयर्स थे इन्होंने अपील जो थी वो दायर की थी, जिसमें कि उन्होंने सारे वो जो ऑब्जेक्शंस डाले थे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच किए थे दिसंबर 23 को ला के दिए थे उसमें पेपर्स पूरे नहीं थे, तो तमाम जो रेलेवेंट पेपर्स हैं वो जनवरी 6 तक आप ला के दें. ये अपील फाइल की थी सरदार लतीफ खोसा ने अंडर आर्टिकल 185 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो सैटरडे को इमरान खान ने पिटीशन जो थी ये सुप्रीम कोर्ट को की थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसका ऑर्डर जो है ऑलरेडी इसके अंदर है. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले तो इनकी बात मान ली थी, फिर इनकी प्ली जो थी वो डिसमिस कर दी थी, और फ्रेश प्ली जो थी अब डाली थी इमरान खान साहब ने, और उन्होंने कहा था कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है इसको स्टे किया जाए, और ये कहा था कि ये जो है उनका जो फंडामेंटल राइट है उसको डिनाई किया जा रहा है कि उनको इलेक्शंस नहीं लड़ने दिया जा रहा, तो ये उनको मिलना चाहिए. शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं जी, उनको हालांकि कह दिया गया था कि उनको बेल दे दी गई है साइफर केस में, लेकिन फिर भी उनको आज डिटेन किया गया है फिर से अंडर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, या जिसको बोलते हैं 3MPO, उसके तहत 15 डे का डिटेंशन इनको मिला है. और ये जो ऑर्डर इशू किया है ये डीसी रावलपिंडी ने किया है फॉर हिज अलेज्ड रोल इन मे 9 राइट्स. और उन्होंने कहा जी कि हमें पता नहीं है कि अगर इनको जेल से निकाला गया तो फिर से ये वो वाली एक्टिविटीज में शामिल ना हो जाएं जिसमें कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाए, जिसमें कि लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ जनरल पब्लिक जो है उसको हार्म आ जाए. 3-member सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने अप्रूव किया था इनका और इमरान खान साहब का बेल इन केस ऑन दिसंबर 22nd. लेकिन आज फिर से इनको जो है पकड़ के डिटेन किया गया है। जाहिर है कि पीटीआई के लिए बहुत ही मेजर ब्लो है, क्योंकि जाहिर है बाकी उनकी तमाम की तमाम लीडरशिप जो है इट इज बिहाइंड द बार्स, और इमरान खान साहब भी हैं। इलेक्शन जो है फरवरी 8 को आने वाले हैं अगले साल, तो उसमें वो चाहते थे कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब आ जाएंगे तो फिर पार्टी को रीऑर्गेनाइज करना इनके लिए ईजी हो जाएगा, लेकिन अब इनको जो है फिर से पकड़ लिया गया है। यानी मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या जंगल का कानून चल रहा है भाई, कि इलेक्शन आपके आने वाले हैं और आप कह रहे हैं जी कि लेवल प्लेइंग फील्ड है। लेवल प्लेइंग फील्ड अगर है तो भाई एक पार्टी के सारे आपने लीडर्स अगर जो है वो बंद किए हुए जेल के पीछे हैं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है? कौन लड़ेगा फिर पीटीआई की तरफ से इलेक्शन जो है? तो आप जब तक उनके लीडर्स को छोड़ेंगे नहीं तो वो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? और आप कैसे कह रहे हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? यानी एक जो या दो पार्टीज को आप फेवर देने के लिए एक पूरी की पूरी एक नेशनल लेवल की जो पार्टी है उसको अपने दीवार के साथ लगाया हुआ है, और आप कह रहे हैं जी कि हम तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन आपके कैसे आप कराएंगे? तो ये जो है बड़े सोचने की बात है। सिंध की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है जी, कल दिसंबर 27 को उसने जो है सिंध के अंदर हॉलिडे का ऐलान किया है, और उन्होंने कहा है जी कि ये हमने हॉलिडे का ऐलान इसलिए किया है टू मार्क 16th डेथ एनिवर्सरी ऑफ बेनजीर भुट्टो, जिनको के जो अब अपनी इलेक्शन कैंपेन 2007 में कर रही थी तो इनको गोली मार के मार दिया गया था। सिंध के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर जो है उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा कि भाई हम जितने भी ऑटोनोमस सेमी ऑटोनोमस बॉडीज और कॉरपोरेशंस और लोकल काउंसिल्स जो हैं जो कि विच आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, वो सब जो हैं बंद रहेंगी। कुछ एक्सेप्शंस जो हैं उसमें हैं, कुछ इलाके कुछ ऑफिसेज वगैरह खुले रह सकते हैं, लेकिन अदरवाइज जो है कल छुट्टी रहेगी। दिल्ली में आज बहुत बड़ा वाकया हुआ, और वो ये हुआ कि जो इजरायली एम्बेसी है उसके बाहर कुछ धमाके हुए हैं। इसकी इतला जो है जैसे ही मिली तो जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज थी दिल्ली की वो वहां पे भागते हुए गई, जिसमें के पुलिस की सिक्योरिटी एंड फोरेंसिक टीम भी थी। अब वो ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये यहां पे इजराइल एम्बेसी के बाहर ये धमाके कैसे हुए हैं। इजरायली एम्बेसी के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा है कि हाँ ये धमाका तो हुआ है, लेकिन हमारा डिप्लोमैट्स और दूसरा स्टाफ जो है वो बिल्कुल अनहार्म्ड है, और इजरायली अथॉरिटीज जो है अब इंडियन अथॉरिटीज के साथ मिलकर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हैं कि इसके पीछे कौन था या इस ब्लास्ट का कॉज क्या था। राहुल गांधी जी जो हैं वो आज हार्वर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ एक वीडियो लिंक के ऊपर इंटरैक्ट कर रहे थे, और उन्होंने आज बहुत बड़े इल्जाम लगाए हैं मोदी जी की गवर्नमेंट के ऊपर। उन्होंने कहा जी मोदी जी की गवर्नमेंट जो है वो एक कास्ट अपार्थाइड सिस्टम हिंदुस्तान के अंदर जो है चला रही है जिसको कि हम खत्म करना चाहते हैं। हालांकि इससे पहले इन्होंने कहा था कि कास्ट सेंसस होना चाहिए लेकिन ताकि पता चल सके कि ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, लेकिन इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए सियासत का। इन्होंने कहा जी कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टेंटली ये कोशिश कर रही है कि एक आइडियोलॉजी, एक रिलीजन और एक लैंग्वेज जो है उसको हिंदुस्तान के अंदर प्रमोट किया जाए, और निगोसिएशन जो है उसको किल कर रहे हैं बीजेपी की गवर्नमेंट, और तमाम के तमाम अदारे जो हैं उनके ऊपर इन्होंने कब्जा किया हुआ है और उनको अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए यूज कर रहे हैं। इसलिए एक पॉलिटिकल फ्लाइट है, यानी कि पॉलिटिक्स जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज की थी वो उड़ती चली जा रही है हिंदुस्तान से। वो कहते हैं जी यहां पे ना तो आप बात कर सकते हैं ना निगोसिएशन कर सकते हैं, और उसकी वजह से मुझे डर है कि यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो कलैप्स ना कर जाए और हिंदुस्तान के टुकड़े ना हो जाए। उन्होंने कहा कि आप देख ले मणिपुर के अंदर वो जल रहा है, जम्मू और कश्मीर को देखें वो जल रहा है, तमिलनाडु के अंदर प्रॉब्लम है, तो इसको हम बोलते हैं कि देर आर प्रॉब्लम ऑन द एजेस। तो इस सिस्टम को समझने के लिए हमको एजेस के ऊपर देखना पड़ेगा। इस वक्त उन्होंने कहा मणिपुर के अंदर तो एक फुल स्केल सिविल वॉर जो है वो चल रही है, और बार बार मोदी जी की गवर्नमेंट कहती है कि हम बहुत सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेकर आए हैं, तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैसेज के लिए नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड है इन फ्यू हैंड्स। तो हमको देखना पड़ेगा कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है किसके इंटरेस्ट में हो रही है, सारे मुल्क के इंटरेस्ट के लिए है या कुछ लोगों के इंटरेस्ट के लिए है। वो कहते हैं जी कि आप बार बार मोदी जी की गवर्नमेंट कहती है हमारी ग्रोथ फिगर्स देखो, ग्रोथ फिगर्स, तो ग्रोथ फिगर्स के साथ अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर्स भी आप साथ साथ लगा के देखें कि हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ गई है। वो कहते हैं इस वक्त हिंदुस्तान को एग्जैक्टली यूएस जो सिस्टम है उसकी तरह चलाया जा रहा है, एक डेट मॉडल के ऊपर हम बेतहाशा डेट्स लेते जा रहे हैं अपने ऊपर, और इसके अंदर हम प्रोड्यूस कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो हमको प्रोडक्शन इकोनॉमी की तरफ जाना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब्स मिले। 2 से 3 बड़े बिजनेसेस जो हैं, अगर उनको तमाम का तमाम बिजनेस दे दिया जाएगा तो मुल्क नहीं चलेगा। वो कहते हैं जी कि अदानी जी को ही देखें जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं मोदी जी के साथ, ये हिंदुस्तान के तकरीबन तमाम एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको ओन करते हैं। तो ये सारी की सारी जो ग्रोथ हो रही है ये कुछ हाथों के अंदर है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, जिसकी के वजह से इनइक्वालिटीज बढ़ती जा रही हैं। तो जब इनसे हार्वर्ड के स्टूडेंट ने पूछा कि राहुल गांधी जी तो फिर बैक टू बैक 2 दफा मोदी जी कैसे जीते, तो राहुल गांधी ने इसके ऊपर कहा जी कि बैक टू बैक ये इस तरह से जीते हैं कि इसके अंदर जो है मैस मोबिलाइजेशन नहीं लाई गई थी, जो कि अब लाई जा रही है, और इसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जिसमें मीडिया का रोल है, लीगल सिस्टम का रोल है, जिसको तमाम के तमाम को खरीद लिया गया है, जिसकी के वजह से ये सही नहीं चल रही है। तो उन्होंने हार्वर्ड के स्टूडेंट से कहा कि आप इमेजिन करो, आप अमरीका के अंदर रहते हो, अगर अमरीका में IRS या FBI जो है वो उसको फुल टाइम ये जॉब दे दी जाए कि आपने इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम नहीं करना बल्कि ऑपोजिशन को बर्बाद करना है, तो आप अमेरिकन उस चीज को कैसे लेंगे। वो कहते हैं जी कि ये जो 4,000 किलोमीटर में अपने मुल्क से चल के आपके मुल्क में यहां पे आया हूं, तो मैं इसलिए नहीं आया हूं कि मुझे बड़ा शौक है, मैं इसलिए आपके पास आया हूं कि हमारी आवाज जो है अब हिंदुस्तान में बंद कर दी गई है और मेरे पास और कोई तरीका नहीं है दुनिया को बताने का कि ऑपोजिशन अब हिंदुस्तान में क्या सोचती है। यानी पहन गल बद गई है, पहन गल बद गई है जी। और जनाब आपको अगर लगता है कि स्टार किड्स के लिए इट इज ऑल इजी, तो इट इज नॉट ऑल इजी इन बॉलीवुड। आज अभिषेक बच्चन का एक इंटरव्यू आया है जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि मैं जो है 2000 की जो डेकेड थी उसमें मैं काफी स्ट्रगल कर रहा था, और वैसे तो मैं अमिताभ बच्चन का बेटा था, और जब मैं बड़ा हुआ तो बड़ी एक्साइटमेंट थी फिल्म इंडस्ट्री में कि मैं आ रहा हूं। लेकिन वो कहते हैं जी कि मैं जिस भी डायरेक्टर के पास जाता था फिल्म इंडस्ट्री में और मैं उनको कहता था मुझे कास्ट करो, तो वो कहते थे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते तुम्हें कास्ट करने की। तो कहते हैं कि फिर मैं जो है मैंने सोचा कि मैं समझौता एक्सप्रेस के अंदर काम करूं, जो मेरा दोस्त राकेश ओम प्रकाश मेहरा बना रहा था वो एड फिल्में बनाता था, लेकिन अचानक से उसने कहा चलो एक फिल्म बनाता हूं तो तुम उसके अंदर काम करो। कहते हैं उसके लिए मैंने दाढ़ी वाड़ी बढ़ाई, मूछें बढ़ाई, और हम फिर मेरे वालिद साहब अमिताभ बच्चन साहब के पास गए, तो हमने उनको कहा कि भाई आप अपना जो अमिताभ बच्चन जो है प्रोडक्शन उनके अंडर ये फिल्म आप प्रोड्यूस करें। तो अमिताभ बच्चन साहब ने भी जब स्क्रिप्ट सुना तो उन्होंने कहा यह इंतहाई बकवास है, मैं इसको प्रोड्यूस नहीं करूंगा। फिर उसके बाद जो है कहते हैं मैं बड़ा चूके हो गया था, हार्ट ब्रोकन, तो बच्चन साहब ने मुझे खुश करने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स में ले गए। फिल्म फेयर अवार्ड्स में मुझे जेपी दत्ता साहब ने देखा और उन्होंने मुझे कहा जी कि चलो ठीक है मैं एक फिल्म बना रहा हूं बहादुर शाह जफर पे जिसमें कि उनके बेटे का रोल मैं तुमको देता हूं। कहते हैं लेकिन वो फिल्म कभी भी नहीं बन सकी, लेकिन चूंकि अब दत्ता साहब मेरे साथ वादा कर चुके थे तो एक और फिल्म जब उन्होंने बनाई 2000 में क्रॉस बॉर्डर रोमांस जो था रिफ्यूजी, जिसके के अंदर करीना कपूर भी थी, तो वो कहते हैं जी कि उसके अंदर फिर उन्होंने मुझे कास्ट किया और फिर मुझे अपना ब्रेक मिला और फिर जो है फिर मेरी गाड़ी कुछ कुछ चली। तो वो कहते हैं जी इतना भी आसान नहीं है, जस्ट बिकॉज आई एम अमिताभ बच्चन सन डजंट मीन कि मुझे बड़े खुले दिल से लोगों ने कबूल किया इंडस्ट्री में। भारत पायन कबूल तो किया ना, बाकी लोग तो बेचारे दरवाजे के बाहर खड़े ही रह जाते हैं, उनको तो दरवाजे के अंदर भी नहीं आने देते। आज ट्विंकल खन्ना साहिबा ने एक इंटरव्यू दिया है, क्योंकि ट्विंकल खन्ना भी अपने जमाने में बड़ी एस एक्ट्रेस थी और बड़े बड़े स्टार्स के साथ इंक्लूडिंग शाहरुख खान उनके साथ इन्होंने काम किए हुए हैं। वो कहती हैं जी कि जिस वक्त मैं फिल्मिंग कर रही थी सॉन्ग मोहब्बत हो गई शाहरुख खान की, ये बादशाह थी उसकी, उसमें ये गाना था, तो कहती हैं मुझे मैं बिल्कुल गैस का कैनिस्टर बनी हुई थी क्योंकि मैं सारा वक्त चिक पीस खाती रहती थी। तो वो कहती हैं जी कि ये जो एक्ट्रेसेस जिनके आप इंटरव्यूज लेते हैं और वो कहती हैं ओ हम तो सब कुछ खाते हैं फिर भी हम पतले हैं, ये सब झूठ है, ये बिल्कुल खाती नहीं है, ये अपने आप को स्टार्व करती हैं। इन 80s में जो मेरी साथ की जितनी एक्ट्रेसेस थी अपने आप को स्टार्व करती थी और मुझे समझ नहीं आता था कि मैं अपने आपको स्टार्व क्या करूं, तो मैं बस चने खाती रहती थी क्योंकि एक तो ये चीप होते हैं और आपको पता ही है मैं गुजराती हूं, तो आपको पता ही है गुजराती जो है वो जरा, मैं कह रही हूं ये वो नहीं कह रही गुजराती, आपको पता है जरा पैसे वैसे बचाने के चक्कर में, तो वो कहती हैं जी मैं गुजराती हूं और ये बड़े चीप डाइट है तो मैं इसलिए ये, और ये हर जगह अवेलेबल भी होते हैं, तो मेरा तरीका अपने आपको स्टार्व करने का यही होता था कि मैं बस चने खाती रहूं सारा दिन। तो ऐसे है। एंड जनाब जो कनेडा है, कनेडा ने तो जनाब कमाल कर दिया, आज फिनलैंड को 5-2 से हराया इन ओपन वर्ल्ड जूनियर हॉकी चैंपियनशिप के अंदर, और इसके अंदर जो एक गोल जो था और असिस्ट किया था ये नेट डेनियलसन ने, और इसके अलावा मैकलिन सेलिब्रिनी, ओवन एलर्ड, इन्होंने भी गोल्स किए, और फिर मैथ्यू पॉइट्रस और मैवरिक लोमरे, उसने भी गोल किए, और जो फिनलैंड था उसकी तरफ से जो दो गोल किए वो एलेक्सांत्री कैशी कैमी ने की, कैशी मैकी ने की, और एक लेसीला ने की। और वैसे वो कहते हैं जी कि ये जो मैचेस हो रहे हैं स्वीडन के अंदर, इसके अंदर फेवरेट्स जो हैं यूएस और स्वीडन ही हैं, लेकिन जाहिर है कि कनाडा का भी चूंकि अच्छा है रिकॉर्ड, तो कनाडा भी जो है इसको फिर से जीत सकता है। लेकिन इसके जो मेन 5 प्लेयर हैं कनाडा के, इसमें जो इनकी जूनियर हॉकी टीम है उसमें वो मेन प्लेयर नहीं खेल रहे, फिर भी बड़ा इन्होंने काम किया जी, आज जीते हैं, तो अब देखेंगे आगे क्या होगा। पाकिस्तान के जो बॉलर हैं जी इमाद वसीम साहब, 35 ईयर्स उनकी एज है, उन्होंने आज बड़े रिकॉर्ड्स जो हैं T20 के अंदर बनाए हैं। इन्होंने ना सिर्फ 1000 रन्स कंप्लीट किए हैं बल्कि 50 विकेट्स भी इसी कैलेंडर ईयर में ली हैं, और ये इन्होंने कारनामा किया है ड्यूरिंग मेलबर्न स्टार्स में जो बिग बैश लीग सीजन 13 हो रहा है उसके अंदर, जब इन्होंने 14 रन स्कोर किए इन 10 बॉल्स, और ही हैज बिकम द फोर्थ क्रिकेटर टू डू सो आफ्टर कायरन पॉलर्ड, 2010 में उसने किया था, अजहर महमूद ने 2012 में किया था, आंड्रे रसल ने 2016 में किया था, एंड नाउ ही हैज डन इट। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट अनाउंस किया था जबकि इनकी सिर्फ 8 साल की एसोसिएशन थी पाकिस्तान नेशनल टीम के साथ, और इन्होंने अपना जो डेब्यू किया था क्रिकेट के अंदर मई 2015 में अगेंस्ट जिम्बाब्वे किया था, तो अब जनाब इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। पीटीवी स्पोर्ट्स जो है जी उसने आज अनाउंस किया है कि आज से जो सेकंड क्रिकेट टेस्ट मैच शुरू हो गया बिटवीन पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया, उसको ये लोग एयर नहीं करेंगे। इन्होंने जो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है उसने कहा था कि उनकी जीरो टॉलरेंस है ये जो सरोगेट कंपनीज और बेटिंग हाउसेज जो हैं, ये जो अपने एड्स डालते हैं क्रिकेट के मैचेस के बीच में, ये बिल्कुल जो है इलीगल है क्योंकि बेटिंग की इजाजत नहीं है पाकिस्तान में। तो इन्होंने भी यही कहा है कि जब तक ये लोग अपने फॉलोइंग द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, अपने ये लोग एड्स नहीं हटाएंगे उस वक्त तक जो है हम मैचेस को रिले नहीं कर सकेंगे। इन्होंने जो है डिटेल सारी भेज दी है पेमरा को भी और मिनिस्ट्री को भी और जितने भी रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स थे। उन्होंने कहा जी जिस वक्त यह मसला रिजोल्व हो जाएगा और बेटिंग कंपनीज अपने एड्स हटा लेंगी लाइव टेलीकास्ट के बीच में से, तो फिर से हम जो है ये मैचेस रिले करने शुरू कर देंगे। और आज से जो मैच शुरू हुआ है दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसमें ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो तो बिल्कुल ही अनचेंज्ड है, और ये बॉक्सिंग डे का आज का टेस्ट जो है वो शुरू हुआ है एट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, और इसके अंदर पहला जो मैच हुआ था उसमें जो शान मसूद की जो हमारी पाकिस्तान की टीम थी उसको 360 रन से 4 डेज के अंदर अंदर ही इन्होंने रैप अप कर दिया था जो पर्थ में मैच हुआ था। तो अब ये सेकंड मैच शुरू हुआ है, इसमें जो स्कॉट पोलैंड जिन्होंने के 6 विकेटें ली थी फॉर 7 रन ऑन हिज डेब्यू एट MCG अगेंस्ट इंग्लैंड, तो उन्होंने 2021 में वो नहीं खेल रहे हैं, हालांकि जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम है वो चाहती थी कि स्कॉट खेले, लेकिन वो कैप्टन का कहना है कि हम उसको मिस करेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स हैं उनमें काफी सारी जो हैं वो चेंजेस हैं क्योंकि बहुत सारी पर्थ के मैच में इंजरीज आ गई थी। फास्ट बॉलर खुरम शहजाद और दो स्पिनर्स जो हैं अबरार अहमद एंड नोमान अली वो अब नहीं खेल रहे हैं। इसके अलावा सरफराज अहमद, फहीम अशरफ, इनको भी निकाला गया सेकंड टेस्ट में। मोहम्मद नवाज जो है वो अब इस जो सेकंड टेस्ट है उसका विकेट कीपर है। इसके अलावा मीर हमजा, हसन अली, शाहिन शाह अफरीदी जो हैं वो बॉलर्स हैं। इनके साथ एक नया बॉलर जो है आमिर जमाल, उसको भी ऐड किया गया है। इसके अलावा जो है एक स्पिन की ऑप्शन जो है पाकिस्तान के पास वो साजिद खान की सूरत में है। तो काफी ज्यादा जो है टीम के अंदर सेकंड टेस्ट के लिए की गई है चेंजेस। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज अगेन अबाउट इंडियाज रेसलिंग फेडरेशन, वहां पे जो बदबख्तियां हैं वो चलती जा रही हैं इंडियन जो रेसलिंग फेडरेशन है उसके अंदर, क्योंकि आज एक और जो रेसलर हैं विनेश भोगट, उन्होंने भी अपना जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्ना और अर्जुना अवार्ड्स जो हैं वो वापस कर दिए हैं क्योंकि संजय सिंह को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट चुना गया था। हालांकि चीजें अभी सस्पेंडेड हैं मगर फिर भी एक्स के ऊपर इन्होंने अपना एक ओपन लेटर डालते हुए मोदी जी को एड्रेस किया और उन्होंने कहा जी कि मुझे जो खेल रत्ना 2020 में मिला था और अर्जुना अवार्ड जो मिला था 2016 में जो कि सेकेंड हाईएस्ट हाईएस्ट और हाईएस्ट अवार्ड्स हैं हिंदुस्तान के, ये मैं वापस कर रही हूं। ये अब तीसरी रेसलर हैं जिन्होंने कि ऐसा किया है। इससे पहले हमने आपको फ्राइडे को बताया था कि साक्षी मलिक साहिबा जो हैं उन्होंने तो स्पोर्ट्स से ही रिटायरमेंट ले ली थी, हालांकि बहुत जबरदस्त उनका भी करियर था और उन्होंने ना सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स बल्कि ओलंपिक्स में भी जो है मेडल्स जीते थे। उसके बाद कल हमने आपको बताया था कि बजरंग पूनिया जो है उन्होंने भी अपना पद्मश्री अवार्ड जो था वो वापस कर दिया था, जब इसको संजय सिंह जो कि लॉयलिस्ट है बीजेपी एमपी ब्रिजभूषण सरन सिंह जिसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट का अलेज्ड केस डाला था, इन सारी फीमेल रेसलर्स ने उसको इलेक्ट किया गया था, उसने कल अपना किया था। और आज ये तीसरी जो रेसलर है इसने भी कहा कि मैं भी नहीं खेल सकूंगी, तो दिस इज बैड न्यूज फॉर इंडिया, क्योंकि ये सारे जो है इन्होंने हिंदुस्तान का नाम बहुत रोशन किया है दुनिया में, बहुत बड़े बड़े दुनिया के से जो चैंपियनशिप्स हुई है उसमें मेडल्स जीत के आए हैं,
मगर उन्होंने फिर भी
सस्पेंड की हुई है अभी।
हाँ,
उन्होंने कहा कि ये हम देखेंगे सारी चीज को, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो इंडिया की वो कहती है वी आर लुकिंग एट इट, हो सकता है फिर इनको ये चेंज करना पड़े, संजय सिंह को चेंज करना पड़े,
काफी बड़ी बात है ये,
क्योंकि वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि एक औरत जो है वो प्रेसिडेंट बने, ये प्लेयर्स कहते हैं सारे, तो अब देखेंगे कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इंडिया की किसी औरत को लगाती है कि नहीं लगाती है।
उनको बहुत सारी रेसलर्स वगैरह बहुत बहुत है इंडिया में, क्योंकि उनमें से किसी एक को बना देंगे वो।
जी,
मामला ठंड पड़ जाएगा,
ठंडा पड़
जाएगा।
ओके, ये थी हमारी
ब्लू जेस के लिए
नीले जे फिर से आ गए हैं वापस।
हाँ जी, केविन केयरमायर सेंटर फील्डर फॉर ब्लू जेस साइन अ 1 year डील फॉर $10.5 million।
बस
हाँ जी,
सिर्फ
वो
गरीब है,
इंजर्ड, ही वॉज इंजर्ड,
बट
स्टिल लो जी, हम दो हाथ दो पांव के साथ 1 million नहीं बना सकते, वो
आधे पैर के साथ
आधे पैर
टूटे टूटे मार के जो है वो 10 million बना रहे हैं।
10 million आखिरी वक्त में वो पूरा करियर हो गया उसका। ये तो एक्सटेंशन है करियर की उसकी, मगर उसके बावजूद भी वो कहते ना कि वो हाथी के दांत,
हाँ नहीं मरा हुआ हाथी 20 लाख का होता है,
होता ना।
हाँ
ठीक है,
हाँ बस उसको $1 million एक मेनू दे।
एंड दिस इज ओनली हिज सैलरी, इसके बाद फिर
एंडोर्समेंट्स
एंडोर्समेंट वगैरह जो मिलते हैं ना, तो दे लिव हैप्पीली।
हाँ चलो ठीक है, उनका पहन कोई अम्मा जी का रोल नहीं, कोई तेरी एंडोर्समेंट दे मामा मुझे हॉकी की स्टिक दो तो मैं उसकी मामा बन के आऊंगी, उसको हॉकी उसको स्टिक दूंगी। है पर
देयर गोज अनदर प्रोडक्ट मामा, देयर गोज अनदर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ही नहीं है जी।
नहीं पाया मैं, ये तो कोई गल नहीं, चलो प्रोडक्ट नहीं है, जर्सी दे देंगे उसको, कहेंगे हाँ मेरा बेटा तुझे मैं जर्सी पिलाऊं, जाओ खेलने जा तू नीले जे का गंदा गेम।
देखो ने प्ले वर्ल्ड, नॉट टू वरी अबाउट इट, डोंट लिसन टू।
अच्छा ये 2023 के बारे में भी आपने कहा था, इतने बड़े ये आपने जो लिख के कलामात लिखे हैं ना, दिस इज द ईयर ऑफ ब्लू जेज एंड ये और वो,
दिस इज द ईयर।
हाँ
वेयर इज इट,
वो कोई उतार के ले गया, वो कह रहे हैं मजर भाई की सारी प्रेडिक्शन खराब आ रही है, गलत आ रही है।
नाना जी, दिस इज द ईयर, दिस इज द ईयर।
अजय जी, ईयर में कितने दिन रह गए अब, दो?
नहीं आपको तो गिनती भी नहीं आ
रही, 30, 31st उसको हम दिन तो नहीं गिन रहे ना, वो तो सैटरडे संडे आ जाएगा।
अच्छा
फिर वो दिन नहीं है,
फिर भी 3 है।
चलो ढाई समझ लो, चलो
ढाई समझ लो। ये थी आज की न्यूज, बखिया की न्यूज, इंशाल्लाह ताला कल जितनी भी न्यूज होंगी अब से लेके कल दोपहर तक की न्यूज पूरी दुनिया की आपके लिए पेश करेंगे हम। शाजिया मरिक जी, थैंक यू सो मच,
थैंक यू मच भाई, आई विल सी यू टुमारो
इंशाल्लाह। एंड अब मैं ले चलता हूँ आपको प्रोग्राम इन प्रोग्रेस विद जीशान अहमद एंड बाकी की बातें इंशाल्लाह ताला कल। उस वक्त तक दी इजाजत, अल्लाह
हाफिज़। गिनती क्या करना है जब तू पिलाने वाला, हाथ तेरे पी लूं मैं जहर का प्याला। वादा यारों का चाहे जब आजमाना, एक एक हो जाए फिर घर चले जाना, एक एक हो जाए फिर घर चले जाना।
चल जाए तो हाथ थाम लेना, जान चली जाए तो आके तू कांधा देना। अरे पांव फिसल जाए तो हाथ थाम लेना, जान चली जाए तो आके तू कांधा देना। काम है यारों का, यारों के काम आना, एक एक हो जाए फिर घर चले जाना, एक एक हो जाए फिर घर चले जाना। हसीना तुझसे जो उल्फत करती हो, ढूंढ निकालेंगे हम जो तुझ पे मरती हो। कोई हसीना तुझसे जो उल्फत करती हो, ढूंढ निकालेंगे हम जो तुझ पे मरती हो। जान लुटा कर देंगे हम प्यार का नजराना, एक एक हो जाए फिर घर चले जाना, एक एक हो जाए फिर घर चले जाना। जाने कब क्या हो ये किसने जाना, एक एक हो जाए फिर घर चले जाना, एक एक हो जाए फिर घर चले जाना।
ये तो सच है पर ये ना हो इस दुनिया से तू डर जाए उस दिन मुझको भूलन जाना जिस दिन मुझसे जी भर जाए से हमने प्यार किया है तब से तुझे कैसा लगता है
तेरे काले काले गालों की कसम अरे 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 सीधा तो बोल
चलता है तेरे को 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 गोरे गोरे बालों की कसम तेरे का 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 काले काले गालों की कसम
तू नशे में उल्टा कह गया सीधा कर ले ओ सनम
तूने के 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 सामने मेरे दिल पे मंत्र फेरा मेरा भो भो भोला दिल तेरा शिकार हो गया
दिखने ले दे चार अरे लगता है हम दोनों को कुछ पिला दिया है यार अब इतने दो दो दोने मुझको दिखने ले दे चार अरे लगता है हम दोनों को कुछ पिला दिया है यार
आजा मस्ती में डांस करें अब भूल के सब संसार
ओ, मेरा दिल से ते ते तेरा तेरा दिल में मेरा ला 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 इंग्लिश में ही हिंदी में प्यार हो
चल जानी तेरे पीछे पीछे
हाँ मेरा दिल ते 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 तेरा तेरा दिल में मेरा ला 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 इंग्लिश में ही हिंदी में प्यार हो गया
तूने के 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 सामने मेरे दिल पे मंत्र फेरा मेरा भो भो भोला दिल तेरा शिकार हो गया Come on now!
मेरा दिल के 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 तेरा दिल के के के
मेरा
ला 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 इंग्लिश में ही हिंदी में प्यार हो गया
हो गया
तूने के 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 सामने मेरे दिल पे मंत्र फेरा
इससे पहले के आज तू आए मेरी आंखों में फिर लहू आए तुझसे रिश्ता मैं तोड़ जाऊंगा मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा इससे पहले के आज तू आए मेरी आंखों में फिर लहू आए तुझसे रिश्ता
मैं तोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। मुझको गम है तेरी जुदाई का, रंज है अपनी बेवफाई का, अपने वादे से फिर गया हूँ मैं, अपनी नजरों से गिर गया हूँ मैं, इससे पहले कि तू मुझे छोड़ मुझको ठुकराए मेरा दिल तोड़े, अपना दिल खुद मैं तोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। सजा दूंगा इससे पहले के लोग ताने दे, तेरे आंसू न मुझको जाने दे, ये ताल्लुक मैं तोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। इससे पहले कि आह दिल भर दे, सब गुनाहों को माफ तू कर दे, ये भरम भी मैं तोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। इससे पहले के याद तू आए, मेरी आंखों में फिर लहू आए, तुझसे रिश्ता मैं तोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा।
जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है जिंदगी। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है जिंदगी। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है जिंदगी। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है जिंदगी। एक पल दर्द का गांव है, दूसरा सुख भरी छाँव है। हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है। जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है।
खून।